संयुक्त राष्ट्र रेडियो के साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सचिन गौड़। 14 जनवरी 2022 के इस अंक में सुनिए, अफगानिस्तान में मौजूदा हालात आम नागरिकों के लिए हैं एक दुस्वप्न। यूएन महासचिव ने सहायता की पुकार लगाई। विश्व भर में पिछले सप्ताह दर्ज किए गए कोरोना वायरस संक्रमण के 1.5 करोड़ से अधिक मामले। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी की चेतावनी, वैक्सीन के रक्षा कवच से दूर लोगों के लिए ओमिक्रॉन है खतरनाक वायरस। वैश्विक अर्थव्यवस्था पुनर्बहाली की धीमी हो रही है रफ्तार। और कजाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत, जांच कराए जाने की मांग। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान में आम नागरिक एक दुस्वप्न जी रहे हैं और देश में भीषण मानवीय संकट के बीच उनकी सहायता के लिए समय बीता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने देश में मौजूदा हालात पर क्षोभ व्यक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगान लोगों की सहायता करने का आग्रह किया है। साथ ही तालिबान को सचेत किया है कि लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं का सम्मान किया जाना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस अपील का स्तर विकट परिस्थितियों को परिलक्षित करता है। परिजनों को खाना खिलाने के लिए शिशुओं को बेचा जा रहा है। देश भर में आजीविका के साधन खत्म हो गए हैं। एंटोनियो गुटेरेश का कहना था,
फ्रीजिंग टेम्परेचर्स एंड फ्रोजन एसेट्स आर अ लीथल कॉम्बिनेशन फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। Rules and conditions that prevent money from being used to save lives and the economy.
UN प्रमुख कह रहे थे कि कप कपा देने वाले तापमान और संपत्तियों का जब्त किया जाना अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक घातक मिश्रण है। ऐसे नियम व शर्तों को इस आपात स्थिति में स्थगित करना होगा जो लोगों की जिंदगियों व अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए धन का इस्तेमाल करने से रोकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता धनराशि का इस्तेमाल सार्वजनिक क्षेत्र के कामगारों की वेतन अदायगी और अफगान संस्थानों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल, तालीम और अन्य आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने में मदद के लिए होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में इस वर्ष के दौरान मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए 2 दिन पहले मंगलवार को जिनेवा में लगभग $5 अरब की सहायता राशि जुटाने की पुकार लगाई थी। मानवीय आपदा राहत मामलों के कार्यालय OCHA के मुखिया मार्टिन ग्रिफिथ्स ने ये अपील जारी करते हुए कहा,
This is the largest ever appeal for a single country for humanitarian assistance. This is a stopgap, an absolutely essential stopgap.
मार्टिन ग्रिफिथ्स कह रहे थे कि किसी एक देश में मानवीय सहायता के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी धनराशि जुटाने की अपील है। ये एक अस्थायी उपाय है जिसकी सख्त जरूरत है। इस अपील के लिए धनराशि जुटाए बिना कोई भविष्य नहीं है। इसे करना ही होगा, अन्यथा लोग देश छोड़कर भागेंगे और बहुत तकलीफें होंगी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले सप्ताह विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमण के 1.5 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने जिनेवा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि किसी एक हफ्ते में संक्रमण मामलों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।
दिस ह्यूज स्पाइक इन इन्फेक्शंस इज बीइंग ड्रिवन बाय द ओमिक्रॉन वेरिएंट व्हिच इज रैपिडली रिप्लेसिंग डेल्टा इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज।
महानिदेशक गेब्रियसिस कह रहे थे कि संक्रमण मामलों में तेज उछाल ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हो रहा है, जो कि हर देश में डेल्टा का स्थान लेता जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर महीने के बाद से एक सप्ताह के दौरान होने वाली मौतों का आंकड़ा स्थिर है और हर सप्ताह औसतन 48,000 मौतें हो रही हैं। सभी देशों में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, मगर ये आंकड़ा कोरोना वायरस की पिछली लहरों के स्तर पर नहीं है। संगठन का कहना है कि संभवतः इसकी वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम गंभीर होना, टीकाकरण या फिर अतीत के संक्रमण से विकसित हुई प्रतिरोधक क्षमता है। मगर महानिदेशक गेब्रियसिस ने आगाह भी किया है,
But let's be clear, while Omicron causes less severe disease than Delta, it remains a dangerous virus, particularly for those who are unvaccinated.
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख कह रहे थे कि एक बात स्पष्ट मानिए, डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन से कम गंभीर बीमारी होती है, मगर ये खतरनाक वायरस है, विशेष रूप से उनके लिए जिन्हें वैक्सीन की खुराक नहीं मिली है। इस बीच यूएन एजेंसी ने कोविड 19 के उपचार के लिए दो नई दवाओं के प्रयोग की सिफारिश की है। इनमें से एक दवा बेरिसिटिनिब गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए है। साथ ही कुछ मामलों में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा सोट्रोविमैप को उन मरीजों के लिए प्रयोग में लाए जाने की अनुशंसा की गई है जिन्हें अस्पताल में भर्ती किए जाने का जोखिम है। कोविड 19 महामारी के व्यापक असर से उभरती विश्व अर्थव्यवस्था में पिछले साल काफी हद तक सुधार दर्ज किया गया था, मगर इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि सुधार की रफ्तार पिछले साल के अंतिम दिनों में सुस्त हो गई और अब वैश्विक आर्थिक पुनर्बहाली के रास्ते में विशाल अवरोध पैदा हो गए हैं। इसकी वजह कोविड 19 संक्रमण मामलों की नई लहरें, श्रम बाजार और सप्लाई चेन में दर्ज किया गया व्यवधान और मुद्रास्फीति के कारण बढ़ता दबाव बताई गई है। पूरे विवरण के साथ प्रतिष्ठा जैन।
रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल वैश्विक उत्पादन में 5.5% की बढ़ोतरी हुई, मगर 2022 में यह आंकड़ा 4% और 2023 में 3.5% तक सीमित रह जाने की आशंका है। पिछले वर्ष 2021 में उपभोक्ता खर्च में मजबूती और निवेश में बढ़ोतरी होने से पिछले 4 दशकों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर देखी गई थी। सामान आधारित व्यापार ने महामारी से पूर्व के स्तर को भी पार कर लिया था। इसके बावजूद हालात में सुधार की रफ्तार 2021 के अंतिम दिनों में धीमी हो गई, विशेष रूप से चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ में। रिपोर्ट में इसकी वजह मौद्रिक एवं राजकोषीय स्फूर्ति प्रदान करने वाले उपायों का असर कम होना और सप्लाई चेन में मुश्किलों का उभरना बताया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनेक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बढ़ने से भी पुनर्बहाली के लिए जोखिम पैदा हो रहे हैं। अगले 2 सालों में और उसके बाद भी रोजगार की दर के महामारी से पहले के स्तर की तुलना में कम रहने की संभावना है। वैश्विक महामारी के कारण देशों के भीतर और उनके बीच विषमता की खाई और गहरी हुई है।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने जर्मनी की एक अदालत द्वारा गुरुवार को सुनाए गए एक ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है, जिसमें सीरिया के एक पूर्व गुप्तचर अधिकारी को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी करार दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
सीरिया के इस पूर्व अधिकारी का नाम अनवर आर है, जिस पर राजधानी दमिश्क में वर्ष 2011 और 12 के बीच देश की गुप्तचर सेवा की अल खातिब शाखा में हजारों लोगों को प्रताड़ित किए जाने में शामिल होने के आरोप निर्धारित किए गए। जर्मनी के कोबलेंज क्षेत्रीय उच्च न्यायालय ने 58 वर्षीय अनवर आर को प्रताड़ना, हत्याएं, स्वतंत्रताओं का हनन, बलात्कार, यौन हमले और लोगों को बंधक बनाने के अपराधों के लिए दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने कहा कि इस मुकदमे से उन अनगिनत सीरियाई लोगों की असहनीय तकलीफों पर फिर से अहम ध्यान केंद्रित हुआ है, जिन्हें बंदी गृहों में उत्पीड़न और अमानवीय बर्ताव का सामना करना पड़ा। यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदसानी ने मिशेल बाशेलेट के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा,
This is a clear example of how national courts can and should fill accountability gaps for such crimes wherever they were committed.
ये एक स्पष्ट उदाहरण है कि किसी देश की राष्ट्रीय अदालतें ऐसे अपराधों के स्थानों पर जवाबदेही निर्धारित किए जाने में की गई कोताहियों को सही करने की जिम्मेदारी निभा सकती हैं और निभानी ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों व मानकों के अनुरूप निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच पड़ताल करके और मुकदमे चलाकर ऐसा किया जा सकता है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदसानी के शब्द।
कजाकिस्तान में हाल ही में उपजी अशांति और विरोध प्रदर्शनों में मृतक संख्या बढ़कर 164 तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने सुरक्षा बलों द्वारा घातक बल के अनावश्यक इस्तेमाल और कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच कराए जाने का आग्रह किया है। खबरों के अनुसार सरकार द्वारा LPG गैस की कीमतें बढ़ाए जाने के बाद रविवार 9 जनवरी को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। ईंधन की कीमतों में वृद्धि वापस लिए जाने के बावजूद इससे उपजी अशांति राजनीतिक असंतोष की अन्य वजहों से और भड़क गई। बताया गया है कि दंगों के बाद देश में अब तक करीब 10,000 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने और अपनी राय अभिव्यक्त करने का अधिकार है। यूएन एजेंसी ने जोर देकर कहा है कि अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे लोगों को हिरासत से तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।